नमस्कार भारत 29 अप्रैल दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अमेरिका की चेतावनी को अनसुना कर उत्तर कोरिया ने किया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। दक्षिण कोरिया ने कहा टेस्ट फेल, चीन ने दी थी संयम की सलाह। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की स्थिति में सुधार को लेकर क्यों ना उम्मीद है आदिवासी।
ट्राइबल नेता तो बंधक हैं, पार्टियों के बंधक, और उनको ये चिंता है कि अगर एक इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा।
और सुनवाएंगे समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता मधु लेमय पर विवेचना।
वो आजीवन योद्धा रहे, एक आदमी जो मात्र 14-15 साल की उम्र में आजादी के आंदोलन में जेल चला गया। सांसदों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए, उनकी राय, सांसद की पेंशन नहीं ली।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का आह्वान करने के कुछ घंटे बाद ही उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण कर दिया है। अमरीकी और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का कहना है कि मिसाइल लॉन्च होने के कुछ सेकंड बाद ही विस्फोट के साथ फट गई है। अभी उत्तर कोरिया ने इस परीक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर कहा है कि उत्तर कोरिया के परीक्षण अपने मुख्य सहयोगी चीन के प्रति असम्मान दर्शाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि यदि विश्व उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को नहीं रोकता है तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। वहीं चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उत्तर कोरिया पर सैन्य बल के इस्तेमाल के खिलाफ तर्क दिए। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देश की बंदूक लॉबी नेशनल राइफल एसोसिएशन के सम्मेलन को संबोधित किया है। ऐसा करने वाले वो 30 सालों में पहले अमरीकी राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय में अपने 100वें दिन की पूर्व संध्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो बंदूक अधिकारों की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि अब व्हाइट हाउस में NRA के मित्र हैं। ट्रंप के इन शब्दों पर तालियां गूंज उठीं। ट्रंप ने शुक्रवार को आर्कटिक में तेल और गैस ड्रिलिंग को मंजूरी देने वाले एक एग्जीक्यूटिव आदेश पर दस्तखत भी किए। ट्रंप ने कहा,
The 8-year assault on your Second Amendment freedoms
has आपको दूसरे संशोधन में मिली स्वतंत्रता पर 8 साल से जारी हमलों का अंत हो गया है। अब व्हाइट हाउस में आपका सच्चा दोस्त और बंदूक अधिकारों का सच्चा चैंपियन है। अब संघीय एजेंसियां कानून का पालन करने वाले नागरिकों से पूछताछ करने नहीं आएंगी, बल्कि हम आपके साथ खड़े होकर आपके लिए काम करेंगे और NRA के साथ मिलकर जिम्मेदार बंदूक मालिकाना हक को बढ़ावा देंगे। ये थे राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द। ब्राजील में 20 सालों में पहली बार हुई आम हड़ताल में हिंसा हो गई है। टीवी पर प्रसारित तस्वीरों में रियो डे जेनेरो के मुख्य इलाकों में बसों और कारों में आग लगी हुई दिख रही है। कार्यकर्ताओं के लगाए हुए मार्ग अवरोधकों में भी आग लगा दी गई है और दुकानों में लूटपाट हुई है। राष्ट्रपति माइकल टेमेर के प्रस्तावित पेंशन सुधारों के खिलाफ बुलाई गई हड़ताल में भीड़ को तितर बितर करने के लिए दंगरोधी पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है। हड़ताल के दौरान देश भर में स्कूल, कॉलेज, बैंक और सार्वजनिक कार्यालय बंद रहे। राष्ट्रपति टेमेर ने कहा है कि उन्हें रियो में हुए घटनाक्रम पर खेद है और वह ब्राजील को आधुनिक बनाने के प्रयास करते रहेंगे। वहीं हड़ताल का आह्वान करने वाली यूनियन के एक प्रतिनिधि ने बताया, हम श्रम कानूनों के एकीकरण के बचाव में और श्रमिक सुधारों के विरोध में और राष्ट्रपति के पेंशन सुधारों के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। हम इस देश में फर्जी तरीके से हो रही ठेकेदारी के विरोध में हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव में हारने वाले धुर वामपंथी उम्मीदवार जॉन लुक मेलांशों ने अगले चरण में पहुंचे दोनों उम्मीदवारों इमैनुअल मैक्रों और मैरीन लपेन में से किसी का भी समर्थन करने से इनकार कर दिया है। पहले चरण में करीब 20% मत प्राप्त करने वाले मेलांशों ने अपने समर्थकों से कहा कि उन्हें किसे वोट देना है ये बताने के लिए उनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद की दौड़ में बचे दोनों ही उम्मीदवार विभाजनकारी हैं। वहीं मरी लपेन ने एक वीडियो जारी कर मेलांशों के समर्थकों से अपने समर्थन में मतदान करने की अपील की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। आज शनिवार है और आज ही यानी शनिवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। अमरीका में दिन बदलने में अभी वक्त है, लेकिन उत्तर कोरिया में करीब 9:30 घंटे पहले तारीख बदल चुकी है और तड़के दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के हवाले से खबर आई कि उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया और अमरीका के मुताबिक ये परीक्षण नाकाम रहा है। इसे लेकर ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा, उत्तर कोरिया ने चीन और उसके अति सम्मानित राष्ट्रपति के प्रति असम्मान दिखाया है। इसके कुछ घंटे पहले अमरीकी विदेश मंत्री ने कहा था कि अमरीका उत्तर कोरिया के साथ बातचीत को तैयार है, लेकिन सैन्य विकल्प भी खुले हुए हैं। पूरा ब्यौरा बता रहे हैं दिलनवाज पाशा।
उत्तर कोरिया ने अमरीका की चेतावनी को दरकिनार करते हुए एक और मिसाइल परीक्षण किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया और अमरीका ने इस परीक्षण को नाकाम बताया है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण से कुछ घंटे पहले ही अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी। उन्होंने दुनिया के बाकी देशों से आह्वान किया था कि वो उत्तर कोरिया पर अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव बनाने में मदद करें। संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए अमरीकी विदेश मंत्री ने कहा है कि यदि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोका गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उत्तर कोरिया में अमरीका के पूर्व राजदूत क्रिस्टोफर हिल का मानना है कि उत्तर कोरिया को लेकर ट्रंप के पास अब बहुत कम समय रह गया है। उन्होंने कहा,
I'm sure he's very worried about the pace of development in the last year. North Korea had two nuclear tests.
मैं मानता हूं कि ट्रंप ताजा घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं। पिछले साल उत्तर कोरिया ने 2 परमाणु परीक्षण किए और 25 से ज्यादा मिसाइल परीक्षण किए, इसलिए वो उत्तर कोरिया के घटनाक्रम की गति को लेकर बहुत चिंतित होंगे। और मुझे लगता है कि अगली बार जब अमरीकी लोगों के सामने चुनाव में जाएंगे, उससे पहले ही उनके सामने ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें अमरीका के लिए नई चुनौती होगी, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी स्थिति में पड़ना चाहेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और रूस ने उत्तर कोरिया पर बल इस्तेमाल करने के खिलाफ तर्क दिए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि उत्तर कोरिया के मुद्दे पर फिर से वार्ता शुरू होनी चाहिए। वहीं रूसी उप विदेश मंत्री ने कहा कि सैन्य विकल्प पूरी तरह अस्वीकार्य होगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सुरक्षा परिषद में कहा, सैन्य बल का इस्तेमाल मतभेद खत्म नहीं करता है, बल्कि ज्यादा बड़े विनाश की वजह बनता है। इसका हल सिर्फ बातचीत और वार्ता में ही है, और यही सभी पक्षों के लिए समझदारी भरा विकल्प भी है। उत्तर कोरिया अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी और प्रतिबंधों को धता बताते हुए मिसाइल परीक्षण करता रहा है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक और नाकाम मिसाइल परीक्षण किया था। परीक्षणों की नाकामी के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया का मिसाइल कार्यक्रम परिपक्व हो रहा है, और यह बाकी देशों के लिए चिंता की बात है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा, और इस खबर पर आप ज्यादा अपडेट के लिए आ सकते हैं bbchindi.com पर।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
अब रुख करते हैं भारत के छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था का सवाल अहम है, लेकिन इस बीच आम आदिवासियों के सरोकार पीछे छूट रहे हैं। बस्तर संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है, जिसके तहत आदिवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन आदिवासियों का आरोप है कि उनके अधिकारों की अनदेखी हुई है, इसलिए वो इस इलाके की पूर्ण स्वायत्तता की मांग उठाने लगे हैं। बस्तर का दौरा कर रहे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने आदिवासी नेता और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम से बात की और पूछा कि बस्तर के हालात कैसे सुधर पाएंगे।
इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई जो देश ने पूरी दुनिया का ध्यान उधर खींचा, और इसके चलते सुकमा, अब सरकार भी कह रही है कि सबसे बड़े नक्सली वहीं रहते हैं, सबसे नक्सलियों का सबसे बड़ा हार्ड नेटवर्क वहीं है, इसलिए सुकमा के लिए स्पेशल कोई प्लान सरकार लेके आ रही है नक्सली के खिलाफ ऑपरेशन का। अमूमन होता क्या है, अभी जैसे ये सरकार की जिस तरीके की भाषा ये कह रही है, तो लगने लगा कि ये लोग अब गाँव वालों को मार ही देंगे, क्योंकि वहाँ फोर्स जाने के बाद गांव के लोग भाग जाते हैं जंगलों में। कहीं पे भी दिखेंगे तो मुझे ऐसा लगने लगा मेरे मन में कि अब उन पर गोली चला देंगे।
ये बताइए कि आपने कहा कि गांव वाले भागने लगे हैं, कितने गांव खाली हो गए हैं उस पूरे इलाके में?
अभी क्या हो रहा है सलमान, इस पूरे मामले में ये अभी से नहीं, ये काफ़ी वर्षों से सलवा जुलूम के पहले से और सलवा जुलूम के दरमियान बहुत ज़्यादा, और इस समय भी वो पलायन थम नहीं रहा है जो आंध्रा जा रहे हैं लोग। ये दोनों तरफ के जो संघर्ष के वजह से लोग को वहाँ कई लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे।
कितने कितने लोग भाग गए होंगे, कोई अनुमान?
मुझे लगता है कि अपने इस सुकमा ज़िले से ही कुछ नहीं तो 15,000 से ऊपर लोग गए। गांव में कुछ एक लोग ऐसे जो लोग हैं जो लोगों को लगता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते तो छोड़ के जा रहे हैं। सच ये है कि हम लोग कभी ये कहा करते थे कि बस्तर को एक अलग तरह का प्रशासनिक जोन बना देना चाहिए, तो हम लोग जब यहाँ कहते हैं कि ट्राइबल को ऑटोनॉमी देना चाहिए कि कम से कम वो अपना वजूद बचा सके, जल जंगल जमीन जिसको बोलते हैं वो कम से कम वो कायम रहे, अपना कल्चर को बचाए रख सके। लेकिन हम लोग इस टाइप की बात करते हैं तो जब ये शहर के लोग जो कुछ बड़े लोग उन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि बोले हम ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, छठवीं अनुसूची की बात करें। संविधान में केवल छठवीं अनुसूची है जहाँ ऑटोनॉमी की बात करता है। सलवा जुलूम जैसा एक अभियान जब दोनों दलों के लोग बड़े लोग मिलकर चला रहे थे तब भी एडवाइजरी काउंसिल में ये चर्चा ही नहीं हुई कि सलवा जुलूम जैसा यहाँ चला जा रहा है, गवर्नमेंट उसको पूरी फुलफिल मदद कर रही है, हर तरीके से मदद कर रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। लेकिन इस पांचवी अनुसूची का सरकार अपने ढंग से इस्तेमाल करती है। जैसे अभी आप लोग सब जानते हैं सलवा जुलूम के दरमियान जितने SPO की भर्ती हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको निकाल बाहर करो, अब मजबूरी हुई उन सबको लेना था तो ले लिया। किस प्रावधान के साथ लिया? पांचवी अनुसूची के साथ लिया। और अभी अभी बस्तर बटालियन नाम से एक भर्तियां हो रहा है 100% ट्राइबल्स। यहाँ सरकार अपने ढंग से उस प्रावधान का
इंटरप्रिटेशन
वो कर रही है, लेकिन आदिवासियों के हित में क्या कर रही है सलमान? सिंगल कुछ नहीं बल्कि उनके खिलाफ काम कर रही है।
अब ये फ्यूचर क्या होगा इस इलाके?
अभी जैसा स्थिति दिख रहा है ये तो बहुत खराब, अभी से खराब है और उससे आने वाले समय में तो बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है।
और इसमें ट्राइबल जो नेता हैं उनकी भूमिका क्या है?
ट्राइबल नेता तो बंधक हैं, पार्टियों के बंधक हैं सच बताएं, और उनको ये चिंता है कि अगर एक इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस में भी है, BJP में भी है।
तो सबको अपनी भूमिकाओं पर गौर करने की ज़रूरत है, ये कह रहे थे आदिवासी नेता मनीष कुंजाम। और अब वक्त ये जानने का है कि दिल्ली से छपे अखबारों की आज की सुर्खियां क्या हैं। दिलनवाज पाशा, मैं देख रहा हूं कि आपके पास सारे अखबार मौजूद हैं।
जी, दिल्ली सरकार ने भी महापुरुषों के जन्मदिवस पर छुट्टियां रद्द कर दी हैं और अखबार कह रहे हैं कि योगी सरकार की
यूपी की तर्ज पर।
जी बिल्कुल, और अखबार भी यही कह रहे हैं कि योगी सरकार की राह चली दिल्ली सरकार। ये खबर आज सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 हफ्ते तक पैलेट गन का इस्तेमाल रोक देंगे पर लोग भी पत्थरबाजी नहीं करेंगे। साथ ही अर्जी लगाने वाली जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि पत्थरबाजी कैसे रुकेगी। तो कश्मीर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीछे मुड़कर बात करने का वक्त है,
बात करने की वकालत।
और एक रोचक खबर है, दुबई से आए एक यात्री ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कहा मैं ISI एजेंट हूँ, भारत में रहना चाहता हूँ। इस व्यक्ति से भारत की जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दिल्ली में MCD चुनावों के नतीजे आए, आम आदमी पार्टी ने कहा कि इसमें EVM की भूमिका है। आप नेता कुमार विश्वास का कहना है हमें EVM नहीं जनता ने हराया। ये खबर आज के दैनिक जागरण में छपी है। और द इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि जो अमीर किसान हैं उन पर कर लगना चाहिए, उन्हें गरीबों से अलग करना चाहिए। कुछ दिन पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार किसानों पर कर नहीं लगाएगी,
यानी आर्थिक नीति को बदलने की सलाह है। और दिलनवाज, आज इंडिया बोल है और आप जान लेते हैं कि क्या है आज का विषय।
BBC इंडिया बोल।
माओवादियों के एक और हमले में सुरक्षा बलों के 25 जवानों की मौत। नक्सली समस्या का समाधान क्या बंदूक है या बातचीत? यही है इस हफ्ते BBC इंडिया बोल का विषय। क्या है इस विषय पर आपके विचार? शनिवार 29 अप्रैल शाम 7:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
और अब वक्त है उस कार्यक्रम का जिसका आपको रहता है पूरे हफ्ते इंतजार, यानी विवेचना, जिसमें आज बात मधु लिमय की। मधु लिमय समाजवादी आंदोलन के न सिर्फ प्रखर नेता थे बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई और गोवा मुक्ति आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मधुले में ओजस्वी वक्ता तो थे ही, संसद में भी अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लेते थे। उनका संसद में आना ऐसे होता था जैसे रोम के महाप्रांगण में बब्बर शेर का प्रवेश करना। मधुलिमय की 95वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
हम लोग चाहते हैं कि जमीन के बंटवारे की समस्या ग्रामीण इलाके में सबसे महत्वपूर्ण है और जमीन की बंटवारे की दिशा में न केंद्र सरकार ने न कांग्रेस की राज्य सरकारों ने कोई ठोस कदम अभी तक उठाए।
ये आवाज है उस शख्स की जिसे संसद में कागज का पुलंदा लिए घुसते देखकर सत्ता पक्ष की फूंक सरक जाया करती थी कि न जाने आज किसकी शामत आने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुलिमय की। बहुत से लोगों को उनसे सख्त चिढ़ भी थी। उनको लगता था कि 1979 में उनका बना बनाया खेल मधुलिमय की वजह से बिगड़ गया। समाजवादियों को डर रहता था कि पता नहीं वो कुर्सी दौड़ में जीतने के लिए उनकी वक्ती तिकड़मबाजियों पर क्या कुछ कहें। तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ के समय ही सुनाई देने वाली अंतरात्मा की आवाज के दौर में मधुलिमय लोकतंत्र, आडंबरहीनता और साफ सार्वजनिक जीवन के पहरेदार बन गए थे। मशहूर समाजवादी चिंतक और मधुलिमय को नजदीक से जानने वाले रघु ठाकुर बताते हैं।
वो एक आजीवन योद्धा रहे। एक आदमी जो मात्र 14-15 साल की उम्र में आजादी के आंदोलन में जेल चला गया और जब 44 में विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद छूटे, जब गोवा की मुक्ति का सत्याग्रह चला तो उसमें वो जेल गए, 12 साल की वो सजा हुई और सजा के अलावा जब वो गिरफ्तार हुए थे और लाठियां जली थी तो बम्बे के अखबारों में ये समाचार छप गया था कि मधुलिमय गेले मधुलिमय का निधन हो गया और उनकी पत्नी चप्पा जी के पास में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आ गए। एक अपने वाणी और कर्म के में जरा भी कोई भेदना करने वाले व्यक्ति वो थे। सांसदों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए, ये उनकी राय थी, तो उन्होंने सांसद की पेंशन नहीं ली और अपनी पत्नी को भी कहा कि इस पेंशन का पैसा मेरी मृत्युवादी मत लेना, वो नहीं लिया। उन्होंने ये महसूस किया कि जब 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल का 1 साल बढ़ा दिया और संसद का 7 साल बढ़ा दिया तो उनका महसूस करना था कि संसद का टाइम 5 साल का था, 5 साल चुने गए थे, हमको इस्तीफा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने दूसरों का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया। हमको याद है कि जब वो जीवित थे और चंपा जी कभी कभी बम्बई से आती थी तो वो चंपा जी के साथ में उनको सहयोग करने के लिए खाना बनाते थे। चूंकि पत्नी उनको बना करती नहीं, आपन बनाइए, तो उनसे कहते थे वो कि चंपा भाई कड़ी में बहुत बढ़िया बनाता हूँ या अमुक सब्जी में बहुत बढ़िया बनाता हूँ, तो ये कह के वो उनमें सहयोग करते थे। मतलब उनमें नर नारी के समानता का जो भाव था वो एक प्रकार का आदर्श भाव था।
मधुलिमय ने दुनिया को बताया कि संसद में बहस कैसे की जाती है। वो प्रश्नकाल और जीरो आवर के अनन्य स्वामी हुआ करते थे। जब भी जीरो आवर होता सारा सदन सांस रोक कर एकटक देखता था कि मधुलिमय अपने पिटारे से कौन सा ऐसा नाग निकालेंगे और किस पर छोड़ देंगे। मशहूर पत्रकार और एक जमाने में मधुलिमय के नजदीकी रहे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक याद करते हैं।
मधुलिमय बड़े गजब के इंसान थे। मतलब ये कि जब संसद के हॉल में प्रवेश करते थे तो कई बार मैंने देखा प्रधानमंत्री जी और मंत्री लोग वो सब अपनी कुर्सी में से हिलने लगते थे और सावधान हो जाते थे कि मधुलिमय आ रहे हैं। और उस समय डॉक्टर लोहिया के मुश्किल से 7-8 सांसद थे, तो जैसे ही मधुलिमय, किशन पटनायक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मणिराम बागड़ी, ये लोग जैसे आते थे एक हलचल सी मच जाती थी संसद में कि जैसे कोई तूफान आने वाला है। और उसमें सबसे ज्यादा लोग, सत्तारूढ़ लोग, मधुलिमय जी से डरते थे कि मधु जी आ गए। तो मधु जी को मैं मजाक में कहा करता था कि मधु जी नाम है आपका मधुलिमय, लेकिन आप बड़े कटुलिमय हैं।
अब बात की जाए मधुलिमय के मानवीय पक्ष की। शतरंज का खेल उन्हें बहुत पसंद था। वो और उनके बेटे अनिरुद्ध बड़े चाव से इस खेल को खेलते थे। मैंने अनिरुद्ध लिमय से पूछा कि एक पिता के रूप में मधुलिमय कैसे थे।
बहुत ही अफेक्शनेट और लिबरल फादर थे। कभी कोई चीज उन्होंने जबरदस्ती नहीं की। सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर छोटे बच्चे के साथ उनकी बहुत पड़ती थी और बच्चों को उनका बचपन रखते हुए भी उनको संज्ञान एडल्ट की तरह ट्रीट करते थे। तो हर कोई बात का एक लॉजिकल डिस्कशन, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, इस तरह से बहुत ही अफेक्शनेट पेरेंट्स थे। बचपन की मुझे याद है कि उन्होंने मुझे नहलाया तक है जब माँ घर पे नहीं रहती थी, मैं बहुत छोटा था।
मधुलिमय की रुचियों का रेंज बहुत विस्तृत था। महाभारत पर तो उनका अधिकार सा था। संस्कृत भाषा और भारतीय बोलियों के वो जानकार थे। संगीत और नृत्य की बारीकियों को भी वो बखूबी समझते थे। जानी मानी नृत्यांगना सोनल मानसिंह उनकी नजदीकी दोस्त थी।
Those days I don't think the politicians were so nearest and so unartistic, sorry to say that. Simple. He used to wash his own clothes, Sakhari. And his wife Champaji was a professor of Sanskrit in Bombay University. She used to tease him, Madhu, teri girlfriend aaye. I found in him a wonderful friend and I used to confide in him even my personal emotions. He had a very big voice, like we used to call him ships hoti na in mid ocean. They have a fog horn, which because there's thick fog. He had a very heavy voice. He was a great scholar and a very keen open ear. I remember modern school, Shankarlal Hall, the last jugalbandi between Pandit Ravi Shankar and Ustad Ali Akbar Khan, with Allah Rakhab on tabla. It was chaka-chak full. Madhujit and my another friend, and we were all on the gaddi takya masnad. And as I started playing, Madhuji whispers to me, sitar to mili nahi hai. Jankari, open that ear, that keen, sharp ear. So that also extends, you know, when you are so sharp in your perceptions.
सोनल मानसिंह एक और मार्मिक किस्सा सुनाती हैं। उन दिनों वो अपना घर बनवा रही थी। एक दिन जब वो उनके घर से चलने लगी तो मधुलिमय ने एक लिफाफा उनके हाथ में रख दिया और कहा कि इसे घर पर जाकर खोलना। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें 5001 रुपए थे।
He just sort of said के ये तुम्हारे लिए रखा है। मैंने कहा क्या है मधु जी, घर जाके देख लेना। मैंने घर जाके देखा एंड आई वाज सो मूव्ड। आई कॉल्ड हिम, ही सेज अरे मेरे किताब की रॉयल्टीज का है, हाँ मेरी तरफ से इसमें डालो। हाउ ब्यूटीफुल।
डॉक्टर वैदिक बताते हैं कि उन्होंने मधुलिमय को कभी फिजूल खर्ची करते नहीं देखा। उनके साथ घर की खिचड़ी और नॉर्थ एवेन्यू की कैंटीन का 2-2.5 रुपए वाला खाना उन्होंने कई बार खाया।
उनकी और मेरी प्रवृत्ति एक जैसी, कभी इलेबोरेट लंबा चौड़ा खाना नहीं बनता था। मुझसे कहते हैं वैदिक क्या बनवाया तुम्हारे लिए, मैंने कहा मधु जी वही जो आप खाते हैं, वो खिचड़ी खाते थे हम दोनों, खिचड़ी और दही, यही हमारा लंच होता था हमेशा। उनके पास जो भी अतिरिक्त समय होता था वो संसद की लाइब्रेरी में बैठ के बिताते थे। और कई बार ऐसा होता था कि वो और मैं दोनों कभी कुमार गंधर्व जी का संगीत सुनने जाते थे, कभी भीमसेन जोशी को सुनने जाते थे। कई बार मधु जी चंपा जी मेरे घर आ जाते थे और मेरे पास कुमार गंधर्व जी हमारे दोस्त थे, वो देवास के रहने वाले थे, मैं इंदौर का रहने वाला, तो उनके कई कैसेट्स मेरे पास दुर्लभ थे, तो वो मधु जी सुना करते थे। एक बार की बात मुझे याद है, कुमार गंधर्व जी यहाँ गंधर्व महाविद्यालय में ठहरे थे, गांधी पीस फाउंडेशन के सामने जो है, तो मधु जी को मैं ले गया, हम दोनों वहाँ सुनते रहे। तो कुमार जी ने पूछा कि वैदिक तुमको तो अच्छा लगता ही है, मधु जी को कैसा लगा? तो मालूम मधु जी ने एक वाक्य कहा, वो आज तक मुझे याद है, बोले हमको त्रिलोक के दर्शन होता है।
मधुलिमय की सादगी का आलम यह था कि घर में न फ्रिज था, न एसी और न ही कूलर, कार भी नहीं थी उनके पास, हमेशा ऑटो या बस से चला करते थे।
एसी कभी उन्होंने लगाए नहीं, और बल्कि जब वो बाद में अस्वस्थ हुए, उनको हृदय के रोग की समस्या आई, तो हम लोग ने काफी जिद की कि तब आपके यहाँ एक एसी लगा देते हैं, और उन्होंने हम लोग के लिए एसी नहीं लगाने दिया। उनके घर में वो फ्रिज भी नहीं रखते थे और ऑटो से भी चलते थे, कभी कभी स्कूटर पे भी बैठ के जाते थे। और कितनी नैतिकता उनमें थी, इसकी एक घटना आपको मैं बताऊं कि जब ये 5 साल का समय उनका संसद का खत्म हुआ है, जब जिसकी चर्चा हमने आपसे की कि आपातकाल में से राहुल गांधी ने बढ़ाया था, तो जिस दिन उनका 5 साल का आखिरी दिन था, उन्होंने जेल से ही चंपा जी को पत्र लिखा कि ये मेरे आखिरी दिन है संसद का, इसके पूरे होने के पहले आप जाके दिल्ली का हमारा मकान खाली करें। और चंपा जी का भी कितना उनके प्रति निष्ठा थी, ये अकल्पनीय है कि चंपा जी बंबई से चल के वहाँ दिल्ली पहुंची, दिल्ली में जाके उन्होंने घर के कमरे का सामान निकाल के बाहर सड़क पर खड़ी हुई। उनको ये पता नहीं हम लेकर जाए कहाँ, सामान लेकर एक महिला सड़क पर खड़ी हुई है। एक पत्रकार मित्र थे जो पहले हम लोग के समाजवादी आंदोलन के साथ रहे थे, वो अपने स्कूटर से वहां निकले, उन्होंने देखा कि चंपा ताई खड़ी हुई है। तो उन्होंने चंपा जी से पूछा कि चंपा ताई कैसे खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि हम आए थे, मंजू का आखिरी दिन था, उन्होंने कहा था खाली कर दो, खाली कर दिया। तो कहाँ जाएंगे, बोले पता नहीं कहाँ जाना है, तो वो अपने घर ले गए।
बहुत ही पारदर्शी व्यक्तित्व था उनका, ईमानदारी उनमें इस हद तक भरी हुई थी जिसकी आज के युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती।
ایک بار کیا ہوا، نارتھ ایونیو والے مکان میں میں شاید رات کو وہیں سویا، تو تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکیا آیا، اس نے گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا تو اس نے کہا کہ 1,000 روپے کا منی آرڈر۔ صاحب اس زمانے میں 67-66 کے دنوں میں 1,000 روپے بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ فیلوشپ ہم لوگوں کو 150 روپے، 200 روپے، 300 روپے فیلوشپ ملتی تھی، پروفیسروں کی تنخواہ 300 روپے مہینہ ہوتی تھی۔ میں نے لے لیے اور سائن کر دیا، میں نے خاص دیکھا بھی نہیں کس نے بھیجے ہیں، کیا بھی مدھو جی کے نام سے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو مدھو جی جب لوٹ کے آئے دوپہر کے بعد شام کو، تو میں نے وہ 1,000 روپے اور وہ منی آرڈر کے اس میں سے کاغذ میں سے جو پھاڑ کے چٹ ہوتی ہے وہ دے دی۔ ان میری طرف دیکھنے لگے گھور گھور کے کہ جیسے میں نے کوئی غلطی کر دی۔ مدھو جی مجھ سے کہنے لگے یہ تم نے کیوں لیے؟ میں نے کہا مدھو جی مجھے کیا معلوم، منی آرڈر آیا، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، میں نے کہا کوئی آپ کا دوست ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، میں نے لے لیے۔ بولے نہیں ویدک، تم سمجھتے نہیں ہو، تم بچے ہو ابھی، یہ معلوم کس کے پیسے ہیں؟ یہ اس چاول والے کے پیسے ہیں جس کے خلاف میں پچھلے ایک ہفتے سے سنسد میں بول رہا ہوں، اور میں نے منو بھائی شاہ کی کھاٹ کھڑی کر رکھی۔ منو بھائی شاہ اس سمے منتری تھے اور میرے خیال سے وہ یہ کامرس کے منسٹر تھے، اور وہ چاول کچھ آیات کیا گیا تھا یا نریات کیا گیا تھا، اس پر بڑی بحث چل رہی تھی سنسد میں۔ تو بولے یہ پیسے نہیں ہیں، یہ رشوت ہے، رشوت، اس کو پھینکو، اس کو واپس کرو۔ اسی دن یا اس کے دوسرے دن صبح میں پوسٹ آفس گیا، میں نے وہ پیسے وہاں واپس کیے، میں نے کہا کہ یہ واپس لیجیے۔ مدھولی میں جی بہت ناراض۔
1977 میں جب جنتا پارٹی کی سرکار بنی تو انہیں منتری پد کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے سویکار نہیں کیا، اور اپنے استھان پر ایک اور سماجوادی نیتا پرشوتم کوشک کو منتری بنوایا۔
جب جنتا پارٹی بنی تھی تو ان کا نام ادھیکش پد کے لیے طے ہوا تھا، اور ان کے ادھیکش پد کے نام کا اعلان بھی ہونے کا طے ہوا تھا، رات کو سنسدی بورڈ میں طے ہو گیا تھا۔ ہم لوگ کا جو جنتا پارٹی کا پہلا سمیلن ہوا تھا پرگتی میدان میں، اس میں اس سمے تک ادھیکش پردھان منتری براجی بھائی تھے، ان کو صبح اعلان کرنا تھا، پر جب وہ صبح اعلان کرنے کے لیے منچ پر کھڑے ہوئے اسی سمے ان کے لیے کچھ لوگوں نے روکا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اور رک جائیے، اور ان کو پھر کسی پرکار کا پریاس کر کے ان کو ادھیکش نہیں بننے دیا گیا۔ اس کے بعد میں پھر ان سے کہا کہ آپ ودیش منتری بن جائیے، تو انہوں نے ودیش منتری بننے سے انکار کیا کہ ہم کو نہیں بننا ہے۔ پھر ان سے کہا اچھا آپ تب سے کسی کو نامزد کر دیجیے، تو انہوں نے چھتیس گڑھ کے جو ہم لوگ کے ایک سماجوادی نیتا ابھی جیوت ہیں پرشوتم کوشک، اپنے استھان پر ان کو منتری بنایا۔
1979 میں انہوں نے جنتا پارٹی میں دوہری سدسیتا کا مدعا زور شور سے اٹھایا، جس کی وجہ سے جنتا پارٹی میں وبھاجن ہوا اور مورارجی دیسائی کی سرکار گر گئی۔
دیکھیے میں تو ایسا مانتا ہوں اگر مدھولی میں ادھیکش ہو جاتے جنتا پارٹی کے تو جنتا پارٹی کبھی ٹوٹتی نہیں، اس کا چرتر بدل جاتا ہے۔ مدھولی میں ٹوٹنے چاہتے تھے، پرنتو مدھولی میں ویچارک راجنیتی کی اسپشٹتا بھی چاہتے تھے، مدھولی میں راجنیتی کے دھارم کے استعمال کے پکش میں نہیں تھے، اور اس لیے یہ ان کے اوپر جو آروپ لگایا جاتا ہے یہ آروپ نتانت غلط ہے۔ انہوں نے دوہری ستا کا سوال اٹھایا۔ جب جنتا پارٹی بن رہی تھی اس سمے پرشن آیا تھا سامنے کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے اور جنتا پارٹی میں جو شامل ہونے والے جن سنگھ کے لوگ ہیں ان کے رشتے کیا ہوں گے، تو اس بیٹھک میں یہ تو دستاویز ہے کہ سنگھ کے لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی سنگھ تو ایک الگ پرکار کی سنستھا ہے، یہ جن سنگھ جو ہے راجنیتک سنستھا ہے، اور یہ لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، ان کا سمبندھ ہم سے نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ سمبندھ نہیں رکھیں گے۔ پرنتو جب جنتا پارٹی میں وہ لوگ شامل ہو گئے اور ان کو کچھ اچھی سنکھیا میں سیٹس مل گئی، لوک سبھا میں آ گئے، منتری بن گئے، تو پھر انہوں نے دھیرے دھیرے اس پورے نرنے کو اپنے آپ نرست کر کے بدلاؤ کرنے کا پریاس کیا۔ پارٹی بنانا کچھ لوگوں کی لاچاری تھی، اور پارٹی توڑنا لوگوں کا سڈنر تھا، اور سڈنر کا دوست مدھو جی کے اوپر لگا دیا گیا۔ مدھو لبے کا اس توڑنے سے کوئی سمبندھ نہیں تھا، مدھو لبے توڑنے کے پوتر ویکتی نہیں تھے، ایک ماتر مدھولی میں کوئی اس پہ آکشیپت کیا گیا، کیونکہ مدھولی میں کی پرتبھا سے، مدھولی میں کے سدھانت سے، مدھولی میں کے چرتر سے، بے باکی سے بہت ساری ویوستھا کے لوگوں کے من میں بھائے تھا، اسے ان لوگوں نے سڈن کر کے مدھولیوں کو بدنام کرنے کا پریاس کیا۔
ریحان فضل، بی بی سی دلی۔
ویویچنا کا یہ انک آپ bbchindi.com پر بھی سن سکتے ہیں، اور آپ کو بتا دیں کہ آئی پی ایل میں کل کولکاتہ اور حیدرآباد نے اپنے میچ جیت لیے۔ وقت آپ سے ودا لینے کا ہے، لیکن پہلے سن لیتے ہیں پرمکھ سماچار ایک بار پھر۔
آج صبح اتر کوریا نے ایک میزائل پریکشن کیا ہے جسے دکشن کوریا اور امریکہ نے ناکام بتایا ہے۔ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے دیش کی بندوق لابی نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے سمیلن کو سمبودھت کیا ہے۔ برازیل میں 20 سالوں میں پہلی بار ہوئی عام ہڑتال میں ہنسا ہو گئی ہے۔ ٹی وی پر پرسارت تصویروں میں ریو ڈے جنیرو کے مکھیہ علاقوں میں بسوں اور کاروں میں آگ لگی ہوئی دکھ رہی ہے۔ بی بی سی سماچار۔
نمسکار، بھارت میں اتنا ہی۔ اسٹوڈیو کا سنچالن کیا دیپک جسروٹیا نے۔ آپ سے اگلی ملاقات شام 7:30 بجے انڈیا بول میں ہوگی۔ بدلتی خبروں کے لیے تب تک آپ کے ساتھ ہیں ہماری ملٹی میڈیا ویب سائٹ bbchindi.com۔ واتسل رائے کو دیجیے انومتی۔ نمسکار۔